ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 22वां अध्यायः। श्री शुक उवाच। एवं विप्रकृत राजन् बलिर्भगवता सुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विप्लवं वचः। श्री बलिर्वाच जद्युत्तमश्लोक भवान्मुदेहितम् वचो व्यलीकम् सुरवद्रमन्यते करोमि ऋतम् तन्न भवेत् कुलम्भिनम् पदम् तृतीयम् कुरुशिष्णे निजम्। विधेनाहम् विनयात् प्रदर्शित न पाशगन्धाद्यसिना तुलत्ययात् नैवार्थपेक्षाद् भवतो विनिग्रहात्। असाधुवादाद्विसमुद्विजयजथ पुंसां श्लाघ्यतमम् मन्ये दण्डम् अर्हतमार्पितम् यम् न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि सन्ति। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहाँ बोल रहे हैं?
जय कृष्ण बताओ।
सुखदेव जी श्री शुकल वाच्य हैं तो कहाँ बोल रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी कहाँ बोल रहे हैं? ये गंगा जी के तट पर बोल रहे हैं, महाराज परीक्षित की सभा में। वहां सभी विषय लिए आए, बलि महाराज की भगवान रामन देव की कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार, जैसे पहले कहा गया विप्रकृतः तिरस्कृत राजन हे महाराज परीक्षित। बलि ही राजा बलि, भगवता भगवान वामन देव के द्वारा, असुर पशु वंश में उत्पन्न बलि महाराज विद्यमान अति बार बार डांटने पर भी अभिन्न आत्मा उनका चित्त बैलेंस नहीं खोया, उनमें क्रोध अभी नहीं आया और तो भगवान से प्रत्याह बोले आप विक्लवम बचा, ऐसा वचन जिसमें कोई घबराहट नहीं थी, अकंप वचन बोले। आज बलि महाराज की युक्ति सुने में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार भगवान ने बलि महाराज को सभा में तिरस्कृत किया, गुरु के सामने बहुत बुरी बात सुना है, कह दिया तुम दानी बनते हो, तुम दान नहीं दोगे, नरक में गिरोगे। लेकिन बलि महाराज का चित्त सम रहा, वे घबराए नहीं और भगवान को उत्तर दिए, अविकलम बचो, विकलता नहीं थी बाणी में, कोई घबराहट नहीं, क्रोध आ जाए या कुछ कहने लगे कि मैंने दे दिया है और क्या दिया, तीन पग मांगने आए और ले लिए सारा जगत, कुछ पग भगवान को बोले नहीं उठे। बहुत सरल वाणी में बिना घबराहट के बोले, वो वाणी इस प्रकार से बलि उवाच। बलि महाराज ने कहा, यदि उत्तम श्लोक हे उत्तम श्लोक, भगवान आप मम ईरितम मेरी वाणी को, मम ईरितम वचः मेरे द्वारा कथित वाणी को, व्यलीकम असत्य सुवर्जा हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मन्यते, यदि से संबंध है, यदि आप मान रहे हैं कि मेरी बात असत्य है तो मैं करूंगी, कर रहा हूं, रितम उसको सत्य कर रहा हूं, तब न वह नहीं हो सकता है, भवेत हो सकते हैं, प्रलंभनम ठगबाजी नहीं होगी, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, तीन पग भूज देने के लिए कहा था तो दे रहा हूं, आप अपने तीसरे पद को, पदम चरण कमल को, तृतीयम तीसरे गुरु रखिए, शीर्षमी सिर पर, ममा में मेरे, निजम अपने चरण कमल को। यह प्रश्न होता है कि जब दो पग में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया तो फिर बलि महाराज का सिर तीसरे पैर के लिए कैसे प्राप्त होता, ये इतना विशाल जगत को नाप लिया और तीसरे पग को केवल एक सिर को नापेगा। लेकिन इसमें बलि महाराज सिद्धांत बोल रहे हैं, सर्वदा यह नीति है कि संपत्ति की जितनी कीमत है होती है उससे दोगुनी तिगुना कीमत संपत्ति वाले की होती है, तो आपने मेरा दो पैर में सारी सारा धन ले लिया तो अभी मेरे पास बहुत धन है, दो पग से दुगुना है मेरे पास धन। धनी आदमी की कीमत धन से दुगुना होती है, तो दो पग तो ले लिया, तीसरे पग के लिए हमारा शरीर ले लीजिए, हमारे सिर पर रख दीजिए। बहुत प्रेम से कहा बलि महाराज, आप हमारा ले लिए लेकिन हमको नहीं लिए, आप हमारे देह को नाप लीजिए, हमारे सिर पर पैर रखिए, अपना चरण कमल रखिए। तो इस तरह से मैं अपनी बात को सत्य करूंगा, असत्य नहीं हो सकते, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। प्रलंभनम का अर्थ होता है ठगबाजी, धोखा देना, कह करके न देना, तो मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा धन है, हमारा शरीर है, मेरी संपत्ति को आपने ले लिया लेकिन ये देह को नहीं लिया। ये देह संपत्ति से ज्यादा है, आप बढ़ाइए अपने चरण कमल को, मेरे सिर पर रख दीजिए। पूर्व तृतीय पदम तृतीय कुरु शीर्ष में लीजिए, मैं शीर्षणी हूं, मेरे सिर पर निजम पदम अपना चरण कमल कुरु रखिए। मलि महाराज के पास श्री भगवान आए थे, वो कपट कर रहे थे, पहले आकर के बात बनाए, बात दादा का बखान की कि ये हिण्य कस्तु ऐसे था, हिण्याक ऐसे था, महावीर था, बड़े दानी थे और कोई भी असुर कुल में युद्ध से पीछे नहीं हटा है, दान देने से पीछे नहीं हटा है। तो गृहस्थों को धर्म का भगवान ने वर्णन किया, ये कपट का उपदेश किया, वो झूठ बोल गए थे। कपट की बात बोलना तो झूठ के बराबर ही है। तो बलि महाराज कह रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोला हूं, मैं बिल्कुल सत्य बोला हूं और सत्य करके दिखा दूंगा कि मेरे शरीर को नाप लीजिए, मेरे सिर पर पैर रखिए। और आपने कहा कि तुम नरक में गिरोगे, तो मैं आपसे बता रहा हूं, विभेद ना हम गिरे, मैं नरक में गिरने से नहीं डरता, न विभेद पदच्युत, अपने पद से मैं गिर जाऊं, मेरा स्वर्ग छीन लिया जाए, सारा जगत छीन लिया जाए, लेकिन इससे मैं डरता नहीं, मैं कंगाल होने से नहीं डरता। न पास बंद है, आपने बड़ों पास में मुझे बांध दिया है, इससे मैं नहीं डरता हूं, न व्यसना दुरुप और कभी समाप्त न होने वाली विपत्ति से मैं नहीं डरता हूं। बहुत बड़ी विपत्ति पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं डरता हूं, नैवार्थ के अर्थ संकट से मैं नहीं डरता हूं, मेरे पास एक पैसा भी न रहे कोई बात नहीं, मैं अर्थ संकट से नहीं डरता हूं और आपके दंड से मैं नहीं घबरा रहा हूं। भवतो विनिग्रह, हमको डर है, भय है तो एक ही बात से, असाधुवाद से, हमारा अपजस इस संसार में न हो। तो मैं अपजस से डरता हूं, असाधुवाद से। हमारे विषय में यह बात फैले कि बलि एक ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, इस अजस से अपकीर्ति से मैं बहुत डरता हूं, और किसी वस्तु से मुझे डर, किसी स्थिति में मैं संतुष्ट हूं। आपने मुझे बांधा है, आप दंड दे रहे हैं, मैं इससे नहीं घबरा रहा हूं, कोई भय नहीं, बल्कि आपके दंड से मैं प्रशंसनीय बनूंगा। पुंसम श्लाघ्य तनो मंदी, पुंसम पुरुषों के लिए श्लाघ्य तनो सबसे प्रशंसनीय बात है, आपके द्वारा दंडित होना। कोई भी महान पुरुष यदि किसी को दंड देता है तो उस व्यक्ति के लिए, उस पुरुष के लिए भाग्य की बात, प्रशंसा की बात। जैसा आपने दंड दिया वैसा दंड माता नहीं दे सकती, पिता नहीं दे सकते, भाई नहीं दे सकते, और भी जो शहीद होते हैं वो नहीं दे पाए। आप जो दंड देते हैं वह अद्भुत दंड होता है। अपने जैसा दंड दिया है, देते हैं, वर्षाधन माता पिता भाई और शहीद और भी स्नेही संसार में होते हैं, वे ऐसा दंड नहीं दे सकते। और वास्तविक बात यह है कि कम नूनम असुराना नम पारोक्ष परमो गुण, आप ऐसे देवताओं के पक्ष से आए हैं ब्राह्मण का वेश बना करके, लक्ष्मीपति होकर के भी आप भीख मांग रहे हैं, आपका स्वभाव है आप असुरों से अधिक प्रेम करते हैं, देवताओं की अपेक्षा देखने में लगता है कि आप देवता का पक्ष कर रहे हैं, लेकिन आप हम असुरों के परोक्ष हितैषी हैं, हमेशा हित करते हैं। हितैषी वास्तव में वही है जो अनजाने में हित करे, कोई अपने मित्र किया का हित करता है लेकिन वो जनाता है मैं आपका हित किया, लेकिन आप ऐसे हितैषी हैं असुरों के राक्षसों के परोक्ष में हित करते हैं, देखने में लगता है कि भगवान असुरों को मार रहे हैं लेकिन वास्तव में आप मारते नहीं हैं, आप उन्हें संसार बंधन से मुक्त करके अपने धाम में भेज देते हैं और कई तरह से दंड देते हैं, कभी धन छीन लेते हैं जैसे आपने मेरे साथ किया है, तो इससे मैं ऐसा नहीं मान लूंगा कि आप हमारे हित ऐसे नहीं, आप हमारा हित कर रहे हैं। यो अनेक मदांधा नाम विध्वंसम चक्षुरा दिशा, जब कोई व्यक्ति संसार में अनेक मदों में हो जाता है, अनेक मद जैसे धन मद जाति का मद, ब्राह्मण में जन्म लेना, उच्च कुल में जन्म लेना, धनी होना, स्वस्थ शरीर का होना और बहुत बड़ा सम्मान मिलना, आदर मिलना, इससे इन मदों से व्यक्ति इस संसार में अंधा हो जाता है, तो मैं भी अंधा हो गया था, तो आपने सभी मदों का अंधापन दूर कर दिया, दूर कर देते हैं इसमें, ये भगवान का स्वभाव विशेष करके अपने भक्तों का है। जब कोई भक्त धन के कारण विद्या के कारण अज्ञान में हो जाता है तो भगवान उसका धन हर लेते हैं, ये उनका स्वभाव है, बहुत श्रेष्ठ भक्तों का धन हरते हैं, आप घबराइएगा नहीं, साधारण भक्तों का धन हरते नहीं, बहुत श्रेष्ठ भक्तों का धन हरते हैं, जो भक्ति से टिक भी नहीं सकते, भगवान देखते हैं कि अब धन इसकी कृष्ण भावना में हानिकारक होगा, यह दुर्दशन में पड़ जाएगा और वह यदि भक्त पक्का है तो किसी उपाय से समय धीरे धीरे उसका धन हर लेते हैं, धन के कारण वह भक्ति से गिर सकता है, इसीलिए धन हर लेते हैं, यह भगवान की कृपा है, क्योंकि अनेक मदांधा नाम विध्वंसम चक्षुरा दिशा, जब व्यक्ति अंधा हो जाता है मदों से, धन मद से, विद्या मद से, रूप मद से, मद से कोई अंधा हो जाए तो जिस कारण से अंधा हुआ है उस कारण को भगवान हटा देते हैं, आंख ठीक हो जाती, निर्मल हो जाती है, तब वो सही सही मार्ग पकड़ता है, किसी का अपमान नहीं करता, ईश्वर को मानता है, सभी जीवों में भगवान मुझको देखता है। संसार में ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, राजनेता, जो सीधे कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते। कि क्यों? इसीलिए कि बहुत धन हो गया है, बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई, तो वे ईश्वर के अस्तित्व को भी चैलेंज करते। एक बार रशिया में मीटिंग हुई थी, बहुत पहले की बात, उस मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया कि जो ईश्वर है, भगवान है, उसको बदगद्दी से हटा देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर है, अगर है तो उसको किसी उपाय से बैकुंठ से पटक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अपने मन का कर रहा है। और पटकने वाले सभी मर गए, कोई नहीं रहा, ईश्वर सबको मार दिया। इतना अभिमान होता है धन का, विद्या का, ये कुछ भी बोलते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं। और ईश्वर के अस्तित्व पर चैलेंज कर हम नहीं मानते, कितने मूर्ख हैं ऐसे बोलते रहते हैं, हम तो ईश्वर को नहीं मानते। लगता है जैसे बहुत बड़ी डिग्री की बात बोल रहे हैं। लेकिन साधारण लोग न माने तो न माने, इन कुत्तों के कहने से वो बॉम्बे के सभी कुत्ते जीत जाए और मीटिंग करने लगे कि इस देश का कोई गवर्नर नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भो करके सभी भोगते हैं, इससे क्या दिल्ली का संसद टूट जाएगा? अगर कुत्ते गली गली में भोंकने लगे, माइक ले लें, इस देश में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये झूठा झमेला है, कोई मंत्री नहीं है, यहां तो कोई सिस्टम नहीं है, एकमात्र समाज है हम कुत्तों का, हमारे अलावा कोई नहीं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम ही केवल हैं, हम ही केवल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और कहीं भोजनालय नहीं है, न्यायालय नहीं है, संसद संसद कुछ नहीं है, नहीं सब कुछ। इस प्रकार का अभिमान आ जाए तो यह अभिमान बहुत अंधा कर देता है, खासकर धन का अभिमान सबसे बड़ा बुरा है, धन का अभिमान। इसीलिए भगवान अपने भक्तों का धन हर लेते हैं, उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वे ईश्वर को ठीक से देख सके, भगवान को समझे। इस विचित्र जगत को बनाने वाला भगवान है ना, और कौन बनाया है? तो साधारण बुद्धि से भी आदमी समझ सकते हैं, जरूर भाई ईश्वर है, सूर्य उग रहा है, सवेरे उगता है, शाम को डूब जाता है, ऋतुएं बदलती है, कभी वर्षा ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, और उस ऋतु के अनुसार वृक्ष में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, ये बिना किसी व्यवस्था के कैसे हो सकता है? कोई व्यवस्था जरूर कर रहे हैं, वही व्यवस्थापक जन्मदाता है इस विश्व का, वही पालन करता है और वही संहार करता है। ईश्वर में विश्वास करना ये मनुष्य का धर्म है, जो ऐसा नहीं मानता है वह मूर्ख है, वह कुत्ते से भी दया विश्वास नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता। भगवान है और उनका स्वभाव है, सबसे पहली क्रिया उनकी है सृष्टि। तो बोले महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप हम असुरों के परोक्ष गुरु हैं, सीता सी परोक्ष में हित करते हैं, सीत करके हित करते हैं। देखने में लगता है कि आप देवताओं के हितैषी हैं, लेकिन देवताओं को आप भोग दे देते हैं और वे अंधे हो जाते हैं, असुरों का धन हर लेते हैं, आप उनको मुष्टि देते हैं। तो अनेक मदांधा नाम विध्वंस अनेक मदों को खत्म करने वाला है, चक्षु देते हैं, आंख देते हैं। जस्मिन बैरान वन होना बूढ़े न बुद्धे तरह बहो ले भी सिद्धि जाम है कांत युग में। ऐसे इतिहास में बहुत से असुर हुए हैं बलि महाराज कहते हैं, जिन्होंने आपसे दृढ़ वैर किया, वैरानुबंध बहुत कड़ा वैर विरोध किया, आपने मन लग जाने के कारण उन्होंने वह सिद्धि प्राप्त की जो बड़े बड़े योगियों को महात्माओं को भी नहीं मिल पाती। केवल आपसे वैर करने पर ये उस सिद्धि को पा गया, क्योंकि वैर करने पर आपने मन अधिक लगता है, आपके नाम का उच्चारण होता है। जहां भी वे मीटिंग करते थे असुर, जैसे हिरण्य कश्यप, एक बार सभा में असुरों के वो संबोधित कर रहा था, सुनो सबका नाम लेकर। विष्णु पहले बहुत सम था, सबको बराबर मानता था, लेकिन अब देवताओं ने उसको अपने पक्ष में कर लिया, दौड़ धूप करके विष्णु को फुसला दिया। अब विष्णु असुरों को मारना चालू किया। सुने हो, मैं सुना हूं, अब वो सुअर का रूप भी बना लेते, सुअर का रूप बना करके हमारे भाई को मारे, तो अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो सूर लिया था हाथ में बहुत लंबा, तो सूर दिखा दिखा कर कह रहा था, प्रतिज्ञा किया, मैं विष्णु का वध करके ही रहूंगा। उसके बाद रात दिन विष्णु का चिंतन करता था और विष्णु की ही बात बोलता था, ये बहुत बदमाश व्यक्ति है, हमारे भाई को मार दिया, हमारा भाई पृथ्वी लेकर के दशरथ में गया था और छिप करके आया, सूर के रूप में आया, मार दिया, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी सभा में मुख्य रूप से हिरण्याक्ष के पुत्र थे, उसके भतीजे और उसकी मां थी और हिरण्याक्ष की पत्नी थी, सबको कहता हूं तुम लोग चिंता मत करो, लेकिन मेरा भाई बहुत बहादुरी से मरा है, युद्ध में मरा है, वो भी विष्णु जैसे वीर से मरा है, तुम चिंता मत करो, उसकी तो गति होगी, लेकिन विष्णु को मैं नहीं छोड़ूंगा, प्रतिज्ञा किया मारना है, और सबसे पहले स्वर्ग गिर गया। वहां उसे पता लगा कि इंद्र विष्णु के अधीन रहता है, स्वर्ग का शासन विष्णु के अधीन, तो वो इंद्र को बंदी बना दिया विष्णु का भक्त समझकर। उसके बाद सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया। उसने सोचा कि इस विश्व में ब्रह्मा एक ऐसा देवता है जो सबके ऊपर रहता है, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने तप किया, घोर तप, खड़े खड़े तप कर रहा था। उसके सिर से बहुत बड़ी आग निकली, उस आग से देवताओं का लोक जलने लगा। तो देवता खुद ही ब्रह्मा जी को जाकर कहे, आप उसको वरदान दीजिए, नहीं तो हमारा लोक जल जाएगा। तो लोग पहले भागे, महर लोग गए देवता में, महर लोग से ऊपर और आँच पहुंच रहे थे तो जन लोग चले, जन लोग से फिर तप लोग, अंत में सत्य लोग में पहुंच के ब्रह्मा जी से विनय किए। तो ब्रह्मा जी अपने वाहन पर, हंस पर चल करके आए हिरण्यकश्यपु को वर देने के लिए। तो जब आए देखे तो वहां हिरण्यकश्यपु का कुछ पता नहीं था, उसके शरीर पर दीमक बेवकार बना गए थे, बलमित जम गया था, और मिट्टी जमने के बाद फिर घास जम गई थी, यहां तक कि बड़े बड़े पेड़ भी हो गए थे। तप करते करते तो ब्रह्मा जी देखे कि यहां हिरण्यकश्यपु है, समझ गए, तो गंगा जी के पानी को उसके शरीर पर छिड़के तो सारे बलमित धार है, तो प्रकट हुए सोने के समान दिव्य शरीर में। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसा तप किसी ने नहीं किया, तुम्हारी क्या इच्छा है वर मांगो? तू तो असुर था, भगवान से डर था, उसने वर मांगा, आप हमको यह वर दीजिए कि मैं किसी भी देवता से, किसी भी व्यक्ति से कभी हारूं नहीं और किसी भी अस्त्र से मैं मरूं नहीं। उसको भय था सुदर्शन चक्र से और वज्र से, तो उसने मांगा कि हमारी वज्र से मृत्यु न, सुदर्शन चक्र से हमारी मृत्यु न। जब ब्रह्मा जी चलने के लिए तैयार हुए, ठीक कहकर के कहता, सुनिए अभी हम और चीज लूट किए हैं, लिखे हैं, अभी लिस्ट बहुत ज्यादा है मांगने का। तो ब्रह्मा जी रुक गए, उसने कहा, मैं धरती पर न मरू, आकाश में न मरू, ऊपर न मरू। वो जानता था कि कभी कभी लोग मर जाते हैं विमान दुर्घटना में, और जमीन पर तो मरते ही हैं। तो माना कि मैं जमीन पर न मरू और आकाश में न मरू, ठीक है, और सुनिए मैं रात में न मरू और दिन में न मरू, मैं घर के बाहर न मरू और घर के भीतर न मरू, मैं किसी आदमी से न मरू, आदमी भी बहुत खतरनाक है। इन्हें सकस्पू ने कहा कि मैं मनुष्य से न मरू और किसी पशु से न मरू, गीली वस्तु से न मरू, कठोर वस्तु से न मरू, मतलब विष से न मरू। ये वरदान दीजिए कि मैं मरू ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो नियम है, सबको मरना पड़ता है, मैं भी अमर नहीं हूं। तब है कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप मुझे अमर होने का वर नहीं दे सकते हैं, तो ये सब वर दीजिए, मैं ऊपर नहीं मरू, नीचे नहीं मरू, रात में न मरू, दिन में न मरू, किसी पशु से न मरू, किसी मनुष्य से न मरू, रात में न मरू, दिन में न मरू, घर के बाहर न मरू, घर के भीतर न मरू। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा आंसू पा गया वरदान ब्रह्मा जी का, और सारे जगत को तबाह कर दिया, देवताओं का लोक जीत लिया। और कहता था कि ये दो देवता तो हमारी पूजा के बस में शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु मिलता नहीं है उसको, खोते खोते हार गए। वैकुंठ भी गया था, भगवान को खोज रहे थे, लेकिन भगवान ने देखा कि ये तो बाहर देखता है, वो तुरंत सूक्ष्म रूप से उसके हृदय में प्रवेश कर गया, तो कहीं भगवान नहीं मिले। तो अंत में ये निर्णय किया तो लगता है हमारे भय से विष्णु का हार्ट अटैक हो गया। तो अब क्या बैर करना है, फिर बैर छोड़ दिया और आ गया अपनी राजधानी में। लेकिन इस राजधानी में घटना खास अपने घर का अपना लड़का वो विष्णु का महान भक्त निकल गया, उसको बहुत चिंता तो बहुत तरह से मारने का प्रयास किया, सूर्य से पर्वत पर से गिरा करके, हाथी से कुचला करके, आग में जला करके, पर कभी कहीं भी प्रहलाद को मार नहीं सकता। किसी भी वस्तु में भगवान है, भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं। जब अंत में नहीं मरे प्रहलाद जी तो वह विद्यालय में भेज दिया गुरुओं के कहने से, इसको गुरुकुल में भेज दीजिए और शुक्राचार्य जी आएंगे तो नीति सिखाएंगे इसको, अभी तो बच्चा है, अभी क्या इसमें गुण दोष है। हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी बहुत बड़े नीति के जानकार हैं, तो आएंगे इसको नीति पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, इसका विवाह होगा तो ये छोड़ देगा विष्णु की भक्ति। लेकिन प्रहलाद जी स्कूल में गए, वहां पर कभी कभी छुट्टी होती ही थी, छुट्टी होने पर बच्चों को बुलाए प्रेम से और कहे यह जीवन नश्वर है, शरीर बदलना पड़ेगा, इस शरीर से चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें। सभी बच्चों ने मान लिया क्योंकि प्रहलाद जी की शिक्षा बड़ी उत्तम थी और गुरु के पढ़ाए हुए सत्य को बिल्कुल निग्लेक्ट किया, तो गुरु लाए पकड़ करके प्रहलाद महाराज के पिता के सामने उन्हें पूछा, अब तक तुमने जो पढ़ाई किया है उस सबसे श्रेष्ठ शिक्षक क्या है। प्रहलाद ने सहज तरह से उत्तर दिया बिना भय के, पिताजी भगवान विष्णु का श्रवण करना, कीर्तन करना, चरण सेवा करना, अनौधा भक्ति बता दें, यही सबसे श्रेष्ठ। उसको इतना क्रोध आया तुरंत अपने हाथ से मारना चाहिए प्रहलाद को, लेकिन भगवान प्रकट होकर के हृदय कस्तू को हिला दी, हिरण्यकश्यपु बाद में रावण बना और अंतिम जन्म वह शिशुपाल बना। शिशुपाल जब भगवान की अग्र पूजा हो रही थी सारी सभा में, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किए राजसीय यज्ञ, तो वहां प्रस्ताव रखा गया सबसे अग्र पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा किसकी की जाए यज्ञ में। तो सहदेव जी ने उठ करके बताया कि भगवान कृष्ण कि पूजा सबसे श्रेष्ठ है। अगर इनकी पूजा होती है तो सारे विश्व की पूजा हो जाएगी। जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से वृक्ष के शाखा पर शाखा फल फूल सब जगह पानी पहुंच जाए, ऐसे ही कृष्ण की पूजा करने से सबको तुष्टि हो जाए। तो बहुत भव्य तरीके से युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी रानी के साथ भगवान की पूजा की। पूजा चल रही थी तब तक शिशुपाल खड़ा हो गया और लगा गाली बंद। युधिष्ठिर सबको बेवकूफ बना रहा है, इतने लोगों को बुला करके अरे ग्वाले की पूजा करा रहा है, यहाँ इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि बैठे हैं, ब्रह्मर्षि बैठे हैं, ब्रह्मर्षि जैसे वशिष्ठ हैं, नारद जी हैं, भृगु हैं, सबके बीच में एक चरवाहे की पूजा हो रही है, क्या कहा जाए। काम बहुत बलवान है, सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है, सभी युधिष्ठिर की बात मान रहे हैं। युधिष्ठिर पूजा कर रहा है कि कृष्ण के गुणों से नहीं, कृष्ण से इसको प्रेम है इसीलिए पूजा कर रहा है, कृष्ण की विशेषता से नहीं। अभी मैं इसको मार दूंगा, तो धनुष उठा लिया, गदा उठा लिया, भगवान से लड़ने वही पूजा हो रही है। तो फिर विदेशी महाराज के पक्ष में जो थे भीम अर्जुन और राजा लोग, इससे बहुत बंद हुए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ में भगवान ने देखा कि यज्ञ में गड़बड़ी हो जाएगी, उन्होंने सबको रोका, अपने पक्ष के लोग आप लोग बैठिए चुपचाप शांत रहिए, बड़ी शांति से अपने चक्र को चला करके उसका गर्दन काट दिया, शिशुपाल का वध कर दिया। वध होते ही सब लोगों ने देखा सभा में कि शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और वो ज्योति प्रकाश सीधे भगवान के चरण में प्रवेश कर, तो सूचित कर रहा था कि इसको भगवान की प्राप्ति हो। तो जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ गति है तो शिशुपाल को मिली। बड़ी महाराज कहते हैं ऐसे अनेक असुर हुए जिन्होंने आपसे बैर किया, बैरा में बंद, बहुत कठिन बैर अनुबंध, अनुबंध करते बैर की गांठ, और वह गति प्राप्त किए जो बड़े योगियों को नहीं मिलती। जस्मिन बैरानुबंध है ना रूढ़ है न विविधे तरह बहो निर्विधे सिद्धि, यहां है कांत जो बहो बहुत से असुर इस परम सिद्धि को प्राप्त किए बैर पर। जिनसे बैर करने पर भी यह लाभ होता है, उनका ध्यान मिलता है, उन्हीं प्रभु के द्वारा में बांधा गया। आपके कर्म अद्भुत है प्रभु, मैं आपके द्वारा बांधा गया हूं, इसके लिए मुझे कोई लज्जा नहीं है और मेरे मन में कोई दुख नहीं है, क्यों बांधा गया। सबसे बड़े हितकारी के द्वारा मैं बांधा गया, आप जो हमको बोले तुम दम्भी हो, दान देने का वचन दे करके पूरा नहीं किया, इन सब बातों से मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप मुझे बांधे हैं वरुण पाश से, इसके लिए मुझे कोई लज्जा नहीं है आना बैठना, क्यों मन में कोई घबराहट नहीं है, लज्जा नहीं है। बड़े महाराज कहते हैं पितामहो में सम्मत प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद। मेरे बाबा मेरे पितामह प्रहलाद महाराज भवदीय सम्मत आपके भक्तों के द्वारा बहुत प्रशंसित हैं, सब उनका आदर करते हैं। भक्तों में प्रहलाद महाराज एक कसौटी के समान, तो हमारे बाबा आपके भक्तों के सम्मत हैं, भवदीय सम्मत है, आपके सभी भक्त उनको मानते हैं। और हमारे पितामह तो प्रहलाद महाराज आपके भक्त थे, इस कारण से भगवत विपक्ष आपके विपक्ष में रहने वाले अपने पिता हिरण्यकश्यपु के द्वारा बहुत कष्ट में पहुंचाएंगे। प्रहलाद महाराज का एक ही दोष था कि ये आपकी शरण में थे, मैं आपको मानते थे, इसी कारण से उनका पिता हिरण्यकश्यपु उनसे रुष्ट था और उनको मारना चाहता था। और मारने के लिए उसने क्या क्या दुख नहीं दिया प्रहलाद महाराज, बहुत प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन फिर भी भगवान आपके चरण कमल को ही प्रहलाद महाराज पकड़े रहे, कभी नहीं छोड़ा। इतना कष्ट हुआ, भीषण आग में जलाया गया, हाथी से कुटवाया गया, विष भरे कंदरा में डाला गया, विष था, बड़े भयंकर सांपों से दसे गए, बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन वे आपका ध्यान एक पल के लिए ही छोड़े गए। कितना दुख हुआ, लेकिन फिर भी आपका नाम जपते रहे, आपको प्रणाम करते रहे, वे आपका चरण कमल छोड़े नहीं। तो हमारे लिए आदर्श है प्रहलाद महाराज। इतना कष्ट होने पर भी प्रहलाद भगवान का चरण कमल छोड़े नहीं, तो मैं कैसे छोड़ दू? मैं तो प्रहलाद महाराज का सिखाया हुआ, प्रहलाद महाराज का क्या विचार था वो कहते हैं, मात मनाने न जहाती अंकुत मृत हारे सुजना के दस कि जाया संस्कृति हेतु भूत मतस्य गेह किन्हाई शोध। प्रहलाद महाराज ने सोचा आत्मा ने न जहात एवं तथा, इस शरीर से आत्मा से क्या फायदा है, क्या लाभ है, अंत में यह छोड़ ही देता है, शरीर एक दिन गिर जाएगा निश्चित है, अंततः मतलब अंत काल में मृत्यु के समय यह शरीर आत्मा का साथ छोड़ देता है। छूट जाता है, लेकिन प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं जहात यम तत्व, यह देह ही छोड़ देता है आत्मा को, आत्मा नहीं चाहता है छोड़ना, लेकिन देह असमर्थ हो जाता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, कितना भी बीमार हो मरने की स्थिति होती फिर भी शरीर प्रिय लगता है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शरीर ही उसको छोड़ देता है। देह परिवर्तन निश्चित है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं रोज, गंदे कपड़े को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, नया शरीर मिलेगा। और कैसा शरीर मिलेगा ये कोई नहीं जानता, परिवर्तन होगा शरीर का, और इस शरीर के बाद कैसा शरीर मिलेगा, किस योनि में, पशु में या पक्षी में, मच्छर में, घास में, कुछ पता नहीं। दोनों बात भगवान गीता में बताते हैं, ध्रुव है, निश्चित है, शरीर छोड़ना और शरीर ग्रहण करना। तो इस शरीर की ममता में क्यों फंसे, क्या लाभ है, किमात मनाने में जहा तीन, इस शरीर से क्या लाभ है जो हम छोड़ देता है। आत्मा नित्य है, लेकिन नित्य आत्मा को यह अनित्य शरीर कुछ दिन के लिए मिलता है, छूट जाता है, कुछ वर्ष के लिए, कुछ दिन के लिए यह शरीर मिला है और छूट जाएगा। इस ज्ञान में हम लोगों को हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहला विचार है कि आत्मा से यह देह पृथक है, इसी को संवारने में, इसी को भोजन देने में, और इसी में तेल लगाने में और कार्यों में अपने समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। तो जब तक शरीर है किसी खास काम के लिए है, तो काम पूरा कर लेना चाहिए। काम क्या है, इस शरीर से इस संभावना में प्रगति करनी, भक्ति करना। भगवान ने एक छोटे समय में यह अवसर दिया है, ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु होगी मनुष्य की, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। अगर कोई बहुत अच्छी जिंदगी जिए तो 100 वर्ष, बहुत कम समय है। आत्मा तो अनादि काल से बहुत काल तक रहेगा, इसकी मृत्यु नहीं है। न जायते मृते वा कदाचि, नयम भूतं भवेता वा नहि। आत्मा अमर है, अजर है, लेकिन यह शरीर मर्त है, चौभंगुर है, प्रतिदिन मृत्यु हो रही है शरीर की, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। उसे वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के सेल्स मर जाते हैं और नए बनते रहते हैं। ये बताते हैं कि 3.5 साल में शरीर पूरा मर जाता है, ऐसे सेल्स नए बनते हैं, तो उन्हीं को मिला करके दूसरा शरीर बनता रहता है। जैसे दीपक का लौ होता है, दीपक की ज्वाला जलती है तो ऐसा लगता है कि वो अखंड है, लेकिन दीपक की जो शिखा होती है अंत में खत्म होती है, और दीपक की बत्ती से तेल के संयोग से ज्वाला जलती रहती है। तो हर एक क्षण नई ज्वाला आती है, लेकिन पता नहीं लगता है कि मर गया दीपक, वह अखंड दिखाई पड़ता है। जैसे ही शरीर के कण परमाणु बनते रहते हैं और मिटते भी रहते हैं, मिटते हैं शौच से, पेशाब से, पसीना से, और जाते हैं और बनते भी रहते हैं। तो 3.5 साल में एक शरीर पूरा मर जाता है, दूसरा मिलता है। तो हम लोग जीवित हैं लेकिन जीवित अवस्था में ही शरीर तो मर जाता है, प्रतिक्षण मर रहा है, प्रतिक्षण परमाणु बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। ये भ्रम बस व्यक्ति अपने को मान लेता है कि मैं ये देह हूं और वही जानता है कि मैं मरूंगा नहीं, इसलिए उसकी धारणा होती है कि आत्मा मरने वाला नहीं है। पर आत्मा को समझना चाहिए तो देह को ही आत्मा मान लेता है तो वो कभी भी अमर नहीं हो सकता, मरना तो है ही शरीर जहाति अंततः, यह अंततः जहात छोड़ देता है। तो शरीर की ममता में पड़ करके अपना समय नहीं खोना चाहिए, तो कुछ ही समय के लिए मिला है और इसके लिए बहुत बेचैन नहीं होना चाहिए कि शरीर को बचा ले, खा ले, पी ले, पहन ले, घर मकान बना ले, तो इसमें समय बर्बाद नहीं करना। कुछ भी हम करें, कुछ भी प्रयास करें, कितना कष्ट सहे, लेकिन ये शरीर निश्चित छूटेगा। ये सब देखी हुई जाते हैं किसी डॉक्टर से, औषधि से, हॉस्पिटल से, इस शरीर को बचाया नहीं जा सकता। यह तुरंत में जाएगा ही, लेकिन जब तक है तब तक इससे काम निकालना है। सबसे बड़ा काम है इसी शरीर से जप करना है, महामंत्र का उच्चारण करना, भागवत करना, गीता पढ़ना, सत्संग करना। तो अपने शरीर का मूल्य इसी में है। अगर हम भगवान की भक्ति कर लिए इसके द्वारा, तब शरीर रहे या जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर काम नहीं किए, अपना भक्ति नहीं किए, तो बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है। भगवान ने शरीर दिया है लेकिन छीन भी लेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए चिंता करनी चाहिए कि शरीर जब तक है और शरीर जब तक जवान है तब तक भक्ति करें। बुढ़ापा में कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कहीं कोई रोग हो गया तो रोग भी शरीर को अक्षम कर देगा। भगवान का जप भी नहीं कर पाएंगे, उनको इसका अनुभव है। जब उनको पंजाब में कौन शहर है, जलंग है, वहां जब पैरालिसिस हुआ तो मैं भगवान के मंदिर में था, खड़ा था, लेकिन पैर में थोड़ी सी झिझिमी जैसी हुई और इसके बाद बस एक मिनट में ही मैं खड़ा नहीं रह सका। अपने एक शिष्य से, भक्त से मैं कहा कि मेरे मुझको पकड़ो, तो पकड़े। इसके बाद मैं गाड़ी पर चढ़ करके आया रूम में जहां रुका था। वहां आने के बाद मैं प्रसाद खाया और प्रसाद खा करके देव मुंह धोने के लिए बाथरूम में जा रहा था, तब तक गिर पड़ा। मैं कर्टेन पकड़ा, पर्दा पकड़ा घर का, लेकिन पर्दा भी गिर पड़ा। उसके बाद मुझे ध्यान है कि मेरे मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, बोलने की शक्ति ही नहीं थी। प्रयास करने के बाद भी आवाज निकल नहीं पाता था। स्मरण था, मन में जप होता था लेकिन वाणी से बोल नहीं सकता था। दिल्ली आया वहां 10 दिन के शिविर में था, फिर भी बोली नहीं निकल। इसके बाद वृंदावन आया, वृंदावन से फिर बॉम्बे आया कुछ भक्त की प्रार्थना पर, तो मुझे कथा कहनी थी। कथा के समय मुंह टेढ़ हो जाता था, कोई कथा नहीं निकलती थी, लेकिन भगवान की कृपा से आवाज आने, महामंत्र निकलने लगा, तो धीरे धीरे विश्वास हो गया कि ये ठीक है। और मैं पुतना बध की कथा कहा कि मीरा रोड में, तो बहुत लोग कहे कि ना ठीक है, आवाज ठीक हो गई, तब कुछ साहस भी गया, साहस मिला, मैं विश्वास किया कि भगवान ठीक कर देंगे। और भगवत कृपा से मैं ये कथा कह लेता हूँ, महामंत्र जप लेता हूँ, ये शक्ति कुछ है, लेकिन ये शक्ति कभी भी जा सकती है किसी की, अभी कभी भी कुछ हो सकता है। ये शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नाक मनाने में जहा की अंततः, जो शरीर अंततः छोड़ देगा आत्मा को, इससे क्या लाभ है। तीन रिक फुरा गई स्वजना की दशा, और जो अपने स्वजन है घर के लोग, वो तो केवल डाकू है, स्वजन नाम है किसी का, लेकिन सब रिक फुरा है। रिक्त मन धन, धन लेने के लिए जन्म लिया, परिवार में शरीर लुटेरे जैसे होते हैं, सबके परिवार में बात है, लुटेरे जैसे हैं, अंत में लुट ही लेते हैं, खास करके बेटा, बेटा लुटने के लिए ही जन्म लेता है। अगर कोई बाप मर जाए तो देखता है, देखा जाता है कि इसका कोई उत्तराधिकारी है कि नहीं, तो सरकार भी बेटे को दे देती है ध्यान, तो लूट दिया कि नहीं, ये लूटना ही है ना। जो धन बहुत परिश्रम करके व्यक्ति कमाया, तो व्यापार करके या डॉक्टरी करके या तो किसी भी तरह से प्रोफेसर बन करके, मास्टर बन करके, पढ़ाई लिखाई करके धन कमाया, बहुत परिश्रम और बहुत सावधानी से रखता है पैसे को, पर उसके स्वजन भाई लड़के से लगे रहते हैं कि इसका धन कम ले, और उस अस्पताल जाता है उस समय अथवा उसकी मृत्यु के समय सारा धन ले लेते हैं, जीवित अवस्था में ले लेते हैं। तो ऐसे डाकुओं से क्या लाभ, आदमी उन्हीं की ममता में पड़ा रहता है, ये हमारा परिवार है, ये मेरे स्वजन है, लेकिन स्वजन वो केवल धन लुटने के लिए है। ये प्रहलाद महाराज का विचार स्वजना के दशी, स्वजन नामक दशी है, वो है डाकू। मान लीजिए डाकू किसी घर में आए और किसी के टोपी पर लिखा पुत्र भाई ये सब, तो डाकू ही रहेंगे, तो इनका नाम है परिवार में जो जन्म लिए, तो नाम है भाई नाम है, लेकिन है जात है, दस्यु है। तो इन दस्युओं के फेरे में पड़ करके व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है, परिवार की ममता में तोड़ करके जप नहीं करते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। बल्कि कभी कभी ये भी देखा जाता है व्यक्ति दूसरों को सिखा सकता है लेकिन अपने परिवार के डाकुओं को कुछ नहीं बोल सकता। ये लड़के स्कूल जा सकते हैं लेकिन महामंत्र का जप नहीं कर सकते, ये बात सत्य है ना। और जो कठिन परिश्रम से कमाई की गई है, कमाई का पैसा ले ही लेते हैं। ये धन कमाया है व्यक्ति, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, इसका सबसे सच्चा उपयोग है कृष्ण भक्ति में लगाना, भक्ति के विकास में लगाना, गंगा की यात्रा करना, भगवान की भक्ति जिससे वो काम करना। पैसे को व्यर्थ खर्च कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी हानि होती है, उसी के कारण व्यक्ति नरक में चले जाते हैं। धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, उचित काम में लगाना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में भक्ति बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम सुनना, वृंदावन जाना, भगवान को धाम की यात्रा करना, मंदिर की यात्रा करना, तो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। वहां जाने पर भगवान का दर्शन होता है, प्रणाम करते हैं और भक्तों के द्वारा जो कथाएं होती हैं उसको सुनना चाहिए बड़े ध्यान से। अगर धन इसमें लगता है, धन तो सब जगह लगता ही है, यहां से अगर जरूर जाना हो तो धन नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे, टेम्पो को या टैक्सी को देना ही पड़ता है, बस वाले को देना पड़ता है। तो धन का ये उपयोग है, भगवान के मंदिर में जाने के लिए बस पकड़ना या टेम्पो पकड़ना, टैक्सी पकड़ना, ये धन का उपयोग है। और गीता खरीद करके प्रतिदिन पढ़ना, भगवान की बात को पढ़ना, ध्यान देकर सीधा प्रभुपात की व्याख्या, धन का ही उपयोग है सच्चा। ये भक्ति में वृद्धि करेंगे काम, शरीर मिला है इसे तो इस संसार में कितने मनुष्य हैं, उनको पता नहीं कितने अरब हैं। भारतवर्ष में केवल 125 करोड़ है, 125 कोटि मनुष्य हैं। इन मनुष्यों में अधिकांश ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ये शरीर हमको मिला है भगवान की भक्ति के लिए, कुछ पता नहीं है। जैसे पशुओं को पता नहीं हमको क्यों जन्म मिला है, वे केवल बस खाते हैं, सोते हैं, कोई काम करते हैं, ऐसे ही मनुष्य को कोई पता नहीं क्यों हमको ये जन्म मिला है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें क्या करना चाहिए, इसका कोई पता नहीं। किसी किसी को पता है कि हमको मानव देह प्राप्त है, इसकी विशिष्ट चेतना है, हमको भगवान को समझना चाहिए, बहुत कम लोगों का ज्ञान है। तो वे उपाय करते हैं भगवान को जानने का और दुख मिटाने का उपाय करते हैं। उपाय बहुत से हैं, वो ज्ञान प्राप्ति के उपाय में लड़ते हैं। तो मनुष्यों में बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं जो भगवत गीता से सहायता लेते हैं, भगवान से सहायता लेते हैं। भगवान तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए, वे बारम्बार अवतार लेते हैं और अपना उपदेश भगवत गीता उसी जगत में छोड़ करके गए हैं। और उन्होंने कोई लिखा नहीं है कि ऑल राइट रिजर्व, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी छाप सकता है। तो इतनी सुविधा भगवान ने दिया। और सबसे अंत में वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और स्पष्ट कहे कि भगवान का नाम जपो, यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। हरे नामा हरे नामा हरे नामा जपो, कला नाश्ते व नाश्ते व नाश्ते गति रहने गति रहने। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम गति है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस तरह से भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमें इस अवसर से अवश्य लाभ ले लेना चाहिए, अन्यथा पछताने के अलावा कोई गति नहीं। शरीर नाशवान है और परिवार का सदन भी नाशवान है, जाति देश सब नाशवान है। एक दिन देह छूटेगा, परिवार छूट जाएगा, जाति छूट जाएगी, देश भी छूट जाएगा, गांव छूट जाएगा, और उसके बाद कैसा देश मिलेगा कोई पता नहीं, कहां जन्म मिलेगा, किस जाति में, मच्छर में, मनुष्य में, कुछ पता नहीं। गति के विषय में अनिश्चिंतता है, परंतु निश्चित केवल एक चीज है, डेथ इज श्योर, मरना निश्चित है, और कुछ भी निश्चित नहीं है। तो मृत्यु से डरना चाहिए और मृत्यु से भी अधिक डरना चाहिए समाज से, सामान्य लोगों से। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं समाज से डरना चाहिए। समाज के लोग तो ज्यादातर बैलमुख हैं, भोगों में पड़े हैं, स्पर्धा है, कंपटीशन है, केवल भोगों को इकट्ठा करने है और भोगने की। उत्थम संनिश्चित पिता महो महान अगाध बोध बहुत पार करना। इस प्रकार से निश्चय करके प्रहलाद महाराज जिनका ज्ञान अगाध है, आपके चरण कमलों को पकड़े हैं और आपका चरण कमल अकुतो भयम है, भगवान के चरण कमल में रहने से कोई भय नहीं और सर्वत्र भय। जनाब भीतर को धनों से अशुभ कुल से दूर रहते थे, खास उनका परिवार अशुभ था, इसलिए उससे प्रेम नहीं करते थे। ऐसी कारण से उनके पिताजी को भगवान ने मार दिया। बलि महाराज कहते हैं कि इसी अथा हम आत्मनिकोष क्रांति कम हम तो क्रांति। बड़े भाग्य की बात है कि मैं आपके चरणों के पास आ गया हूं, आप हमारे यहाँ ब्राह्मण बनकर के आए, ये हमारा भाग्य। मैं तो धन में आसक्त था लेकिन आपने बलात् मेरा धन छीन लिया, मेरा धन छीन लिया और बलात् अपने चरणों में ले लिया। ये अंतक के विषय में पा रहा है, जो अंतक है मृत्यु अंत कर देना आया, ये सदा आयु के साथ लगा हुआ है। हमलों की आयु जो है वो मृत्यु के बिल्कुल निकट है, कब मृत्यु होगी कोई पता नहीं। व्यक्ति इस बात को भूल जाता है, भोगों में पड़ जाता है। तो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि अपनी बहुत अच्छी धन इस समय आपके पास आ गई। इस प्रकार से बलि महाराज जब बोल रहे थे उसी समय प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए। प्रयत्न घास मानस प्रहलाद में भगवत प्रिय उत्तरा जगाम कुरुश्रेष्ठ लंका पति हे कुरुकुल श्रेष्ठ परीक्षित। जब बलि महाराज इस प्रकार से बोल रहे उसी समय प्रहलाद महाराज आए, वे ऐसे चमक रहे थे जैसे वाका पति चंद्रमा चंद्रमा के समान चमक रहे उदित हुए। तो बलि महाराज अपने पितामह को देख लो विराजमान बहुत सुंदर लग रहे थे, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी और शरीर अंजन के समान चमक रहा, काला अंजन के समान। बहुत लंबा शरीर था उनका, प्रांशु पीताम्बर पहने थे, सुंदर मरी प्रलम्ब बाह, उनकी बाहें बड़ी बड़ी थी, सुभगम बहुत ही सुंदर थे, सभी लोगों को बहुत प्रिय लगते थे। बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज की पूजा करना चाहते, जब भेंट होती थी तो बहुत बढ़िया से पूजा करते थे, लेकिन इस समय बलि महाराज बंधे हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, तो वे प्रहलाद महाराज को सिर झुका कर केवल प्रणाम किए, कोई पूजा आदि नहीं कर पाए पहले की तरह। इसको तो बंधे थे बड़ों पास में बंधा गया तो नमस्कार भी केवल सिर से किए, सिर झुका करके। उनको लज्जा आ रही थी कि हमारे गुरु महाराज पितामह प्रहलाद महाराज हमको जान गए कि दोषी है, और बलि महाराज अपने में अपराध की भावना कर रहे थे, मैं अपराधी हूं, मैंने भगवान का अपराध किया। और श्री प्रहलाद महाराज भी सूत्रों समझ गए कि अपराधी अपराधी है, तभी तो भगवान बांधे। प्रहलाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने देखा भगवान बैठे हैं दामन देव, हम बहुत निकट में उनके पार्षद सुनंद आदि बैठे हैं, उसको देख करके प्रहलाद जी की आंखों में आंसू भर गए, आनंद के आंसू शरीर में पुलक हो गए, गदगद बारिश कहने लगे। तो वही वह दत्तम पदमन जो मुझे तुम दत्तम पदेवा दत्त वो आपने ही बलु को इंद्र पद दिया था, स्वर्ग दिया था, और आज है हर दिए उसको तो तथा वो सोहन जैसे देना आपका सुंदर था वैसे ही ले लेना सुंदर। क्योंकि ये धाम आत्मा की अभिव्यक्ति कर देता है, आत्मा को मोह में डाल देता है। धन के अभिमान में व्यक्ति भोगों में फंस जाता है, भोगों का ऐसा स्वभाव है कि आत्मा का अनुसंधान हो जाता है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, हे नारायण, हे सभी जीवों के कर्मों के साक्षी, आपको प्रणाम है। आप सबके कर्मों को देखते हैं, भगवान से कह रहे थे, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, अनुमोदन कर रहे थे कि आपने जो इसको दंड दिया, इसका धन छीन लिया, बहुत अच्छा। उसी समय ब्रह्मा जी कुछ बोलना चाहते थे, ब्रह्मा जी बोलने के लिए तैयार हुए, तब तक नाई के पास बिंधावनी पहुंची। देखिए ध्यान देने की बात है, ब्रह्मा जी विश्व के गुरु हैं, भगवान के बाद ब्रह्मा जी हैं, वे बोलना चाहते थे। उसके पहले स्त्री आकर के बोल रही है, बलि महाराज की पत्नी, वो बेचारी घबराई थी, भयभीत थी, उसके मन में दुख था कि उसके पति को बांधा गया है। और जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपने अच्छा किया, इस पर कृपा किया है, तो वो बेचारी घबरा गई, पति को छुड़ाने के लिए ही वो बोलने लगे। उसने इस प्रकार से बोलना चाहिए दीर्घा दीर्घा, ये प्रभु आप क्रीड़ा के लिए इस विश्व का निर्माण किया, आपने इस विश्व का निर्माण किया, इस संसार में सब जगह आपने विपुल भोग बनाया, संसार का निर्माण किया और सबका पालन करते, पालन करने के लिए विविध वस्तु बनाए, लेकिन इस संसार में लोग इतने मूर्ख हैं, खास करके अपने पति को कह रहे हैं, इतने मूर्ख हैं कि आपके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को अपना है, अपना मान लेते हैं, ये नहीं विचार करते हैं भगवान का दिया हुआ, लज्जा भी नहीं आती है ये कहने में कहना। खास करके बलि महाराज ने एक कह दिया कि मैं अपना वचन पूरा करूंगा, शरीर मेरा है, शरीर को दे करके मेरे सिर पर तीसरा पैर रखें। तब विंध्यावली इसकी आलोचना कर रहे हैं, ये लज्जा नहीं आती है इनको कहने में, क्या इनका है, कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन इस संसार में लोग मान लेते हैं कि यह वस्तु मेरी है, इतना ही हमारा है, यह तुम्हारा है और किसी का नहीं, न हमारा है न तुम्हारा है, सब कुछ भगवान का है। तो ये देह बोली महाराज का होता है किसी का, ये तो देह भी भगवान का दिया हुआ है। तो कहने में लज्जा नहीं आ रही है कि मैं देह अर्पित करूंगा। अरे क्या अर्पित करोगे, सब कुछ तो कृष्ण का है, भगवान का है, तो भगवान की वस्तु भगवान को देना है। ये कहकर तो कि मेरा धन है, मैंने दे दिया, दो पर्व तीसरा भी सत्य करण है, ये कहने में लज्जा ही नहीं आती। किसी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि संसार में जो कुछ है सब कुछ भगवान का है, शरीर भी, शरीर तो हम नहीं बनाए हैं ना, शरीर भगवान बनाए हैं। तो ये कहना कि मैं शरीर दे करके अपने वचन को सत्य करूंगा, ये झूठी बात है, कुछ भी अपना नहीं है। स्पष्ट आलोचना करती है इस प्रकार की बात बोलने वाले मूर्ख है और निर्लज्ज है, लज्जा नहीं आती। एक प्रकार से प्रहलाद महाराज को तो सुना रही है, बहुत सुंदर बात बोल रही है मौके पर, इसी में ब्रह्मा जी से आगे बोल रही है। ब्रह्मा जी अभी चुप है, ये भी ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ऊंची बात बोली कि अपना कुछ भी नहीं है, सबके निर्माता भगवान है, सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के, शरीर या धन कुछ भी सब कृष्ण का है। तो ये कहना कितनी लज्जा की बात है कि मैं अपना देह दे दूंगा, आप अपने चरण को मेरे सिर पर रखें, मेरे सिर पर, सिर शरीर में सिर किसका है, सब भगवान का, शरीर का सारा अंग भगवान का, घर भगवान का, धन भगवान का। इस प्रकार की बात बोलना कि मैं धन दे दिया, जो बाकी एक पल है मैं दे रहा हूं, ये बात सोचना कि यह आज ये मेरा धन है, आज मैं इतना कमाया, आज कल और कमाऊंगा। गीता में भगवान कहते ये अशुभ विचार है, अशुभ विचार है, इतना मध्य मया लब्धम इन प्राप्त मनोर थी, आज मैं इतना प्राप्त किया, कल और प्राप्त करूंगा, मैं और धन की वृद्धि करूंगा, मेरे समान कौन है, मैं बलवान हूं, सुखी हूं। इस प्रकार की बात सोचना है असुर का विचार, भगवान ने कहा है गीता में। तो ये कह दिया बलि महाराज ने कि मैं देह दूंगा क्योंकि देह मेरी संपत्ति, और संपत्ति का मालिक संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो धन मैंने दे दिया, धन का अधिकारी मैं हूं, मुझको ले लीजिए, मेरे शरीर को ले लीजिए। इसी पॉइंट को पकड़ लिया वृंदावन में, तो कहते हैं कि उनको लज्जा नहीं आ रही। उसके मन में इच्छा थी कि मेरे पति को मुक्त कर दिया है, पर पति के दोषों को ही बता रही है, गुरु को नहीं। यही चतुर्थाई बुद्धिमती थी, तो परम साध्वी थी, पतिव्रता थी, पर पति के हित के लिए भगवान से बोल रही, सब कुछ भगवान का है, देह या धन कुछ भी सब भगवान का है। तो इनको ये कहना चाहिए तुम्हें, ये प्रभु मेरी बात ज्योति हो गई और जो दो पग आपने नापा वो सब भी तो आपका है। तो वास्तव में ये बात कहना कि मैं दूंगा, मैंने दिया, जो बाकी है वो भी दे दूंगा, मेरी संपत्ति है, ये कहना सुहाग बात नहीं है, ये झूठी बात है। जब सब कुछ भगवान का ही है तो इसको क्यों कहें कि हम देंगे, हम देंगे चाहे हम भोगेंगे, ये विचार असुर का है। सारी दुनिया में सब जगह लोग अधिकार किए हैं, इतना जमीन हमारा है और तुम्हारा है, कुछ को अमेरिकन लोगों ने घेर रखा है, ये जमीन हमारा है, कनाडियन कहते हैं ये जमीन हमारा है, सीमा बना दी, और यहां तक कि अगर कहीं जाना हो आना हो तो हमारे हमसे वीसा लो, हम परमिशन देंगे तब आओगे। जो भगवान की दुनिया है सब जगह, लेकिन कौन कहता है कि भगवान का, सब लोग नाम लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, बॉम्बे में इतना घर है, सब में ईंट लगा है या इस्पात लगा है, सीमेंट लगा है, ये सब वस्तुएं कहां से आई है, सब भगवान की बहिरंगा प्रकृति से है, सीमेंट हो चाहे इस्पात लोहा हो, सब कुछ भगवान से आया है, हम लोग कुछ भी बना नहीं सकते, सब कुछ धरती से लेते हैं, भगवान का है, ये कहना कि हमारा है, उस पर नाम लिख देते हैं, अपना नाम और ये भी लिखते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, इंट्रांस नहीं है, यहां प्रवेश वर्जित है, नो एडमिशन। तो भगवान भी आए तो उनके लिए भी मना है, जिनका सब चीज है बनाया है दिया है, और मिस्त्री बनाया है, मिस्त्री में भी जो बुद्धि है, जो मेहनत है, शक्ति है, वो भगवान की है, पैसा भी सब कुछ भगवान का है, नोट छापना या हीरा सोना सब कुछ भगवान का। बिंदावली जी स्पष्ट करती है कि कोई कोई वस्तु किसी का नहीं है, सब कुछ भगवान का है। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, नारी होकर के भी ब्रह्मा जी से ज्यादा महत्व की बात बोली, तब तो ब्रह्मा जी ठीक तक रह गए, उसको बोलने दिए। जब उसने अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया तब ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी भी घबरा गए बोलने, कि कहने लगे कि हे प्रभु आप ऐसे सुंदर स्वभाव वाले हैं कि संसार में कोई व्यक्ति आपको फल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, आप पर जल चढ़ा दे, आपको अर्पित करे, यहां तक कि दूब अंकुर दूब अर्पित करे, तो उसको या तुलसी दल अर्पित करे तो उसको आप वैकुंठ दे देते हैं, वैकुंठ की संपत्ति देते हैं, और इस व्यक्ति ने बलि महाराज ने तो आपको पूरी दुनिया अर्पित कर दिया, पृथ्वी का सारा वैभव, तीनों जगत का इसने आपके चरणों में अर्पित कर दिया, तो इसको अब बांधना ठीक नहीं है, तो इसको जल्दी से जल्दी खोल दीजिए, ये ठीक नहीं। तुलसी दल अर्पित करने वाले को, जल अर्पित करने वाले को आप वैकुंठ दे देते हैं, वैकुंठ की संपत्ति देते हैं, और सारी दुनिया की वस्तुएं अर्पण करने वाले को आप बांधे हैं, ठीक नहीं। बिंद्रावली बोल रहे थे कि माँ ने ठीक की है, ये गलती इनका आचार है। ये सोचते हैं कि दुनिया हमारी है, हमारा शरीर है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसने सब कुछ अर्पित कर दिया, इसको बांधिए मत, खोलिए तुरंत। तो बिंद्रावली की बात और ब्रह्मा जी की बात का तात्पर्य एक ही है। वो भी बेचारी चाहती थी कि मेरे पति को खोल दिया जाए, और ब्रह्मा जी तो चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा जी आप घबराइए मत, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, मैं उसका हित करने के लिए धन छीन लेता हूँ। भगवान का स्वभाव है। श्रीमद भागवतम में कई बार बातें आई है। एक बार एक असुर था, विराक्ष का पुत्र शकुनी, तो शकुनी का पुत्र असुर था। उसको एक बार नारद जी से मिला, नारद जी से पूछा, नारद जी आप बताइए तीन देवताओं में जल्दी कौन प्रसन्न होता है। तो श्री नारद जी भगवान का नाम नहीं दिए, कह दिए ब्रह्मा जी श्री जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी बंद होने लगते हैं। कोई बात नहीं, उनको प्रसन्न करना है। ब्रह्मा और शिव ने बताया कि इन दोनों में मैं किसकी पूजा करूं। तो नारद जी ने कह दिया उसमें भी ज्यादा आप जल्दी प्रसन्न होते हैं शिव जी, और घर दानी है आशुतोष। तो गया तो पूछा कि कहाँ रहता है। तो नारद जी ने कह दिया, बड़ी का सुन बोल रहे थे नारद जी, तो बताओ केदारनाथ में रहते। तो गया केदारनाथ पहुंचा, और वो बहुत जिद्दी है, शिव को प्रकट करना ही है, अगर नहीं प्रकट हुए तो ठीक नहीं है। तो जा करके अभी जलाया और अपने शरीर का मांस काट काट करके उसने स्वाहा कर लिया, नमः शिवाय स्वाहा, तलवार से मांस काट कर अपना हरण करता शिव को प्रकट करने के लिए। तो सात दिन इस तरह का यज्ञ किया तो भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब उसने निर्णय किया कि अब अपना पूरा शरीर आज में हम कर दिया, गर्दन काटने के लिए तलवार उठाए अपना। तो शिव जी प्रसन्न है, उनको अपनी गर्दन काट करके नमः शिवाय कर दिया। तो जब ही वो गर्दन काटने के लिए तैयार हुआ तभी भगवान से हाथ पकड़ के प्रकट हो गया। बस बस, अरे बेटा मैं केवल बिलपत्र चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाता हूँ, अपनी जिंदगी क्यों नष्ट कर रहे हैं। ठीक है मांगो मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो असुर था, असुर का विचार बड़ा गंदा होता है, और देवताओं का विचार भी गंदा ही होता है। तो शिव जी वर मांगने के लिए कहें तो वो वर मांगा, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो मर जाए, इतना भयानक वर मांगा। तो ये मांगता कि जिसके सिर पर हाथ रखू आबाद हो जाए, हालत हो जाए, चुके रहते ठीक था। लेकिन वो मांग जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रखूं वो मर जाए। तो भगवान सिंह ने कह दिया ठीक, जैसे कोई पिंजरे में फंसे हुए शेर को निकाले तो वो शेर सबसे पहले झपटेगा किस पर, पिंजरा से मुक्त करने वाले। तो वह तो राक्षस था, बल पाते हुए सबसे पहले मस्तक पर हाथ बटने के लिए चले शेर जी के, और शेर जी भागे, उनकी टांग छूटी, भागने लगे और भाग रहे थे तो पीछे मस्तक करके देख रहे थे कितना दूर है, भाग रहा है छुपने को, भागते गए को पीछा करता गया। और जब कहीं विश्रम नहीं मिला तो अंत में भगवान के धाम में भाग, भगवान के धाम की ओर वैकुंठ किया भगवान से। तो भगवान ने दूर से ही देखा कि शिव जी बहुत घबराहट के साथ आ रहे हैं, तो वे तुरंत एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किए, ब्राह्मण का वेश, और उसी रास्ते में खड़े हुए जहां मृकासुर खदेड़ते हुए शिव जी को जा रहा। भगवान ने पूछा बड़े प्रेम से, मृकासुर जी आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? अरे आराम से रहने थे, इतना दौड़ने की क्या जरूरत है? तो उसने दौड़ते हुए भी कहा, ऐसी बात है कि ये हमें बर दिया है, इसके मस्तक पर हाथ रखकर तो मैं इसको मारना चाहता हूं और इसकी पत्नी को लेना चाहता हूं। गौरी का अपहरण करना चाहता, ये विचार शिव भक्तों का। तो भगवान ने कहा, आप इसकी बात पर विश्वास करते हो? जब से इसके ससुर ने साथ दिया है दक्ष ने, तब से पिशाच हो गए, ऐसे ही झूठ बोलता चल रहा है। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी उंगली को अपने मस्तक पर रखिए, तो भगवान की मीठी मीठी बातों में फंस गए। तुरंत अपने हाथ बंगड़ी को मस्तक पर रखा, आराम से गिर गए। इस तरह से भगवान कृष्ण भगवान नारायण बड़े शिव जी के ही आश्रय में, शिव जी अपने बातों में फंस गए थे, तो भगवान ने उनको उबार दिया। शिव जी के भी गति आश्रय, तो भगवान अपने भक्तों को बहुत पक्का करके संपत्ति देते हैं, सुख देते हैं, जल्दी नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी जैसे नहीं है कि कोई 7 दिन में जिद से पड़ जाए, तो विकासु जिद में था कि मैं 7 दिन में शिव को प्रकट करके रहूंगा, नहीं प्रकट होने की जान मारूंगा, अपनी जान मारने के लिए तैयार हुआ, अंत में शिव जी प्रकट हुए। पर भगवान ऐसे नहीं है, बहुत काल तक भक्त को देखते हैं, पक्का हो जाता है कि अब ये नहीं जिएगा, तब ये संपत्ति देते हैं चाहे सफलता देते हैं। इसीलिए धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भगवान कठिन परीक्षा लेकर के तब कृपा करते हैं। इस बात पर विश्वास करना चाहिए, वो जरूर कृपा करेंगे, लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे प्लान के अनुसार नहीं, वे करेंगे वही काम जिसमें भक्त का हित होगा, उसको पक्का बना लेना। जब वो परम शांति से युक्त हो जाएगा तपस्या करके भक्ति करके, तब सुनते हैं कृपा करते हैं। और भगवान शिव कैसे कैसे फेरने पाए राक्षस के, केवल शरीर काट काट करके हवन किया, मांस काट कर, इसलिए वो प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ऐसे नहीं है, पहले भक्त को तपा करके बिल्कुल देते हैं, पक्का बना करके, जिसमें शांति आ जाए, सुनो दमक तक और बुरे विचार से मुक्त हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब उस पर कृपा करते हैं। तो पहले भगवान बनाते हैं भक्त को, पक्का बनाते हैं और दूसरे देवता जैसे तैसे वर दे देते हैं उसको। दूसरे देवताओं में भगवान में यही अंतर है। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, कृष्ण भगवान तो अच्छा है। भगवान देर से कृपा करते हैं, लेकिन ऐसी कृपा करते हैं कि जो जल्दी कृपा करने वालों से बहुत गुना बेहतर होता है। जैसे किसी से आप धन चाहते हैं, अगर आपको देरी से दे और दे दे 1 किलो या 2 किलो सोना, और जल्दी कोई देता है और 10-20 रुपया दे दे तुरंत, तो उससे क्या फायदा है? ठीक है 1 साल के बाद ही दे, लेकिन दे दे 5 किलो सोना तो अच्छा है ना? लेट होने से क्या भगवान देर करते हैं? उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उनका स्वभाव अपने भक्त को पक्का बनाते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री लता।